एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे जब आप उसके वचनों को सुनते हैं। आइए हम उससे पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे दयालु महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरी उपासना करते हैं, हम तेरे पास आते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना का अवसर के लिए कि हम विश्वास के साथ तेरे पास आ सकते हैं और तूने कहा है जो हम मांगेंगे तू उसे देगा। प्रभु यीशु मसीह में हम तेरे पास आते हैं पिता परमेश्वर, हमारे मनों को खोल दे, विशेषकर मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा का वरदान दे, तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे ताकि मैं तेरे वचनों को अच्छी तरह से बतला सकूं। और जितने श्रोता हैं पिता उन्हें तो तेरे वचनों से बहुत आय से आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनकर ग्रहण कर, आमीन। प्रियो, आज हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे प्रार्थना के अवसर के विषय में। एक शुभ अवसर परमेश्वर दिया है हमें, प्रार्थना के जरिए हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं और उसके पास आ सकते हैं और उसे हम मांग सकते हैं जो हम चाहते हैं अपने जीवन में, जो हमारे जीवन के भलाई के लिए है। परमेश्वर हमसे प्रकृति, प्रकाशन, अपने कार्य तथा पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करता है, परंतु केवल यही पर्याप्त नहीं है, हमें भी अपना हृदय उसके सामने उंडेल देना चाहिए। आत्मिक जीवन और शक्ति प्राप्त करने के लिए स्वर्गीय पिता के साथ हमें वास्तविक रूप से वार्तालाप करना चाहिए। हमारा मन उसी की ओर झुका हुआ हो सकता है, हो सकता है कि हम उसके कार्यों, कृपाओं और आशीषों पर ध्यान मनन करते हों, परंतु ये सब बातें भी उसके साथ पूरी रीति से बातचीत करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमें उसके साथ अपने वास्तविक जीवन के विषय में बातचीत करना चाहिए। असल में प्रार्थना करना परमेश्वर के सामने अपने हृदय को इस प्रकार से खोलना है जैसे हम अपने किसी मित्र के सामने अपने मन को खोल कर रख देते हैं। इसका आशय परमेश्वर को अपने बारे में बतलाने से नहीं है, परंतु ऐसा करने से हम परमेश्वर को स्वीकार करने के योग्य बन जाते हैं। प्रार्थना परमेश्वर को नीचे उतारकर हमारे स्तर पर नहीं लाती है, बल्कि हमें उठाकर परमेश्वर के स्तर पर पहुंचा देती है। जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर शारीरिक रूप में था तब उसने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। उसने उनको आदेश दिया कि वे अपनी प्रतिदिन की जरूरतों को पिता के सामने रखें और अपनी सारी चिंताएं उसी के ऊपर डाल दें। और प्रार्थना सुने जाने के विषय में जो आश्वासन उसने अपने चेलों को दिया गया था, वही आश्वासन आज हमारे लिए भी दिया जाता है। यीशु स्वयं जब मनुष्यों के बीच में निवास करता था तो प्राय प्रार्थना करता था। हमारे मुक्तिदाता ने हमारी जरूरतों, हमारी कमजोरियों में अपने आप को शामिल कर लिया और वह हमारे समान एक प्रार्थी बन गया और अपने पिता से नई शक्ति व नया बल प्राप्त करने के लिए विनती करता रहा ताकि वह अपने कर्तव्यों का पालन कर सके और अपनी परीक्षाओं में स्थिर रह सके। सारी बातों में वह हमारा आदर्श है, वह हमारी दुर्बलताओं में हमारा भाई है और सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, परंतु पाप उसके स्वभाव में शामिल ना होने पाया। उसने पाप भरे संसार में संघर्ष और यातनाओं का सामना किया। उसकी मानवता के कारण प्रार्थना करना उसके लिए एक कर्तव्य और सौभाग्य बन गया। अपने पिता के साथ बातचीत में उसे शांति और आनंद मिलता था। जब मनुष्य जाति के उद्धारकर्ता और परमेश्वर के पुत्र ने प्रार्थना को इतना जरूरी समझा और महत्व दिया तो हम कमजोर और पापी नाशवान लोगों को प्रार्थना करने को कितना अधिक जरूरी और महत्वपूर्ण समझना चाहिए। हमारा स्वर्गीय पिता हमारे ऊपर अपनी आशीषों की वर्षा करने के लिए प्रतीक्षा करता रहता है। यह हमारा सौभाग्य है कि अपार प्रेम के इस स्रोते से हम जितना चाहे उतना पिए। वह कितनी आश्चर्यजनक बात है कि हम बहुत कम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता अपनी विनम्र संतानों की सच्ची प्रार्थना सुनने के लिए इच्छुक और तत्पर रहता है, तो भी हम अपनी जरूरतों को उसके सामने रखने में कितना अधिक संकोच करते हैं। स्वर्ग के स्वर्गदूत उन असहाय मनुष्यों के बारे में क्या सोचते होंगे जिन्हें परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, जबकि असीमित प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर का हृदय उनके लिए अगाध प्रेम से भरा हुआ है और हमारी कल्पनाओं से भी अधिक हमें देने को तैयार है। फिर भी हम बहुत कम विश्वास करते हैं और बहुत कम समय प्रार्थना में बिताते हैं। स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने झुकना पसंद करते हैं, वे उसके निकट रहना पसंद करते हैं। परमेश्वर से बातचीत करने में ही उन्हें सच्चा आनंद मिलता है, और फिर भी वे नाशमान मनुष्य जिन्हें उस बड़ी मदद की जरूरत है जो केवल परमेश्वर ही दे सकता है, उसके पवित्र आत्मा की ज्योति तथा संगति के बिना ही रहने में संतुष्ट दिखाई देते हैं। जो लोग प्रार्थना करने में लापरवाही करते हैं, शैतान का अंधकार उन्हें घेर लेता है। परीक्षा में गिराने के लिए उसकाने वाली शैतान की आवाज उनके दिल में पाप करने की इच्छा पैदा करती है, और ऐसा केवल इसलिए होता है क्योंकि वे प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से मुलाकात नहीं करते हैं। परमेश्वर के बेटे और बेटियां प्रार्थना करने में इतना संकोच क्यों करते हैं, जबकि प्रार्थना तो विश्वास के हाथों में वह चाबी है जिसके द्वारा स्वर्ग के उन खजानों के ताले को खोल सकते हैं जहां स्वर शक्तिमान परमेश्वर के असंख्य साधन जमा किए हुए हैं। निरंतर प्रार्थना करने और सावधानी से जागते रहने में यदि लापरवाही की जाए तो हमारे सामने असावधानी के कारण सत्य मार्ग से भटक जाने का खतरा बना रहता है। हमारा शत्रु एड़ी चोटी का जोर लगाकर हमें प्रायश्चित के ढक्कन तक पहुंचने से रोकता है। वह नहीं चाहता है कि हम उसके प्रलोभनों का मुकाबला करने के लिए सरगर्म प्रार्थना द्वारा परमेश्वर से अनुग्रह और विश्वास प्राप्त कर सकें। निसंदेह शर्तें तो हैं जिनके आधार पर हम यह आशा कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर देगा। इनमें पहली शर्त यह है कि उससे मदद पाने के लिए हमारे दिल में इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि उसने वादा किया है कि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, यशायाह 44:3। जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं और जो परमेश्वर की खोज में लगे रहते हैं, वे इस बात की अपेक्षा कर सकते हैं कि उन्हें संतुष्टि प्राप्त होगी। आत्मा के प्रभाव के लिए हृदय का खुला होना जरूरी है, अन्यथा परमेश्वर की आशीषें प्राप्त नहीं की जा सकती हैं। हमारी बड़ी जरूरत ही अपने आप में एक बड़ी दलील है और हमारे पक्ष में जोरदार तरीके से निवेदन करती है। परंतु इन बातों को करने के लिए हमें परमेश्वर की खोज करना चाहिए। वह कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा। मत्ती 7:7, रोमियो 8:32। यदि हम अपने हृदय में पाप को छिपाए रखें, यदि जानबूझकर पाप से लिपटे रहें, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। परंतु पश्चातापी और टूटे हुए हृदय की प्रार्थना सदा स्वीकार होती है। जब उन सब गलतियों को सुधार लिया जाता है जिन्हें हम जानते हैं, तो हम विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे निवेदन का उत्तर देगा। हमारे सद्गुण और अच्छे काम हमें परमेश्वर के सामने कृपा पात्र बनने में मदद नहीं करेंगे, केवल यीशु की योग्यता ही हमारा उद्धार करेगी और उसी का खून हमें शुद्ध करेगा। परंतु फिर भी हमें उन शर्तों को पूरा करना ही है जिससे हम उसके सामने स्वीकार किए जाएं। प्रार्थना स्वीकार होने की दूसरी शर्त विश्वास है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। यह हम पढ़ते हैं इब्रानियों 11:6। यीशु ने अपने चेलों से कहा था, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। यह हम पढ़ते हैं मरकुस 11 का 24 में। क्या हम परमेश्वर के ऊपर उसके वचन के अनुसार पूरा विश्वास करते हैं? यह प्रतिज्ञाएं असीमित और बहुत विस्तृत हैं, और जिसने वादा किया है वह सच्चा परमेश्वर है। जब हम उन चीजों को नहीं पाते हैं जिनके लिए प्रार्थना करते हैं, अथवा उसी समय नहीं पाते हैं, तो भी हमको विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर सुनता है और प्रार्थना का उत्तर अवश्य ही देगा। हम प्राय गलती और नासमझी में ऐसी वस्तुएं मांग बैठते हैं जो हमारे लिए आशीषमय नहीं होंगी, फिर भी हमारा स्वर्गीय प्रेमी पिता हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, और जो वस्तुएं हमने प्रार्थना में मांगी थी उनके बदले वह हमें ऐसी वस्तुएं देता है जो हमारे लिए कल्याणकारी होंगी। अर्थात यदि हमारे आत्मिक नेत्र खोल दिए जाते तो हम उन चीजों को असली रूप में देख पाते जिन्हें हमने मांगा था। जब ऐसा लगने लगे कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलेगा तो हमको परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से लिपट जाना चाहिए, क्योंकि उत्तर अवश्य ही मिलेगा और वही वस्तु मिलनी चाहिए जिसके लिए प्रार्थना करते हैं। यह तो हमारा पूर्वाग्रह ढीठपन है। परमेश्वर इतना अधिक बुद्धिमान है कि गलती नहीं कर सकता, और इतना अधिक दयालु है कि धार्मिकता का जीवन जीने वालों से कोई भी भली चीज छिपा कर नहीं रखेगा। इसलिए उस पर भरोसा करने से मत डरिए। चाहे आपको अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत ना भी मिले तो भी उसकी विश्वसनीय प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते रहिए। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, यह प्रतिज्ञा हम मत्ती का 7:7 में पाते हैं। यदि हम लोग अपनी शंकाओं तथा डर को अपने मन में बनाए रखें अथवा उन उलझनों को समाधान करने की कोशिश करने लगे जिन्हें हम ठीक से समझ नहीं पाए हैं, तो जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे हमारी कठिनाइयां बढ़ती और समस्याएं गंभीर होती जाएंगी। परंतु यदि हम अपने आप को लाचार तथा असहाय समझते हुए परमेश्वर के पास आएं, नम्रता के साथ अपनी आवश्यकताओं को उसके सामने रख दें, तो वह परमेश्वर जिसका ज्ञान असीमित है, जो सारी सृष्टि की वस्तुओं को देखता है और उन पर अपनी इच्छा और वचन द्वारा शासन करता है, वह हमारी पुकार पर ध्यान देगा और हमें समझ देगा। सच्ची प्रार्थना द्वारा हमारा संबंध परमेश्वर की बुद्धि से जुड़ जाता है। शायद उस समय कोई प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई ना दे कि उद्धारकर्ता हमारे ऊपर विशेष प्रेम और दया प्रदर्शित कर रहा है, परंतु वास्तव में वह ऐसा करता है। हम उसके स्पर्श को चाहे देख ना सके अथवा महसूस ना कर सके, पर यह निश्चय जानिए कि उसका करुणामय हाथ हमारे ऊपर सदैव बना रहता है। जब हम परमेश्वर से दया, करुणा और क्षमा के लिए विनती करते हैं तो हमारे अपने हृदय में भी दया दिखाने और क्षमा करने की भावना होनी चाहिए। हम कैसे यह प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमें हमारे अपराधों को क्षमा कर। मत्ती 6:12। यह हमें उस प्रार्थना में सिखाया गया है जिसमें यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करने के लिए सिखा रहे थे। जबकि हम क्षमा ना करने की भावना को अपने मन में पालते हैं तो हम परमेश्वर से कैसे क्षमा आशा कर सकते हैं? यदि हम अपनी प्रार्थनाओं के सुने जाने का इंतजार करते हैं तो दूसरों को भी उसी प्रकार क्षमा कर देना चाहिए जिस तरह तक हम परमेश्वर से क्षमा चाहते हैं। प्रार्थना के द्वारा आशीषें प्राप्त करने के लिए एक शर्त यह भी है कि धैर्य के साथ निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। यदि हम विश्वास और अनुभव में उन्नति करना चाहते हैं तो हमें सदा प्रार्थना में लीन रहना चाहिए। हमसे कहा गया है प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, कुलुसियों 4:2। प्रेरित पत्रस विश्वासियों को यह कहते हुए उत्साहित करता है, संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो, 1 पत्रस 4:7। संत पौलुस आदेश देता है, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। फिलिपियों 4:6। यहूदा ने कहा, हे प्रियो, तुम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर में बनाए रखो। यहूदा की पत्री उसका 20:21। हम पढ़ते हैं पहला यहूना का 5:14-15 में, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। निरंतर की जाने वाली प्रार्थना ही वह जंजीर है जो हमें हमारे परमेश्वर के साथ, जो अनंत जीवन का सोता है, निरंतर बांध कर रखती है। इस प्रकार से परमेश्वर की ओर से जीवन हमारी ओर बहता रहता है और फिर हमारे जीवन में से पवित्रता तथा शुद्धता की भावनाएं निरंतर परमेश्वर की ओर बहती रहती है। प्रार्थना में लगन और उत्साह का होना अति आवश्यक है। प्रार्थना के मार्ग में कोई भी वस्तु या व्यक्ति रुकावट नहीं बनना चाहिए। यही कोशिश कीजिए कि आपके और यीशु के बीच बातचीत लगातार बनी रहे। सदा ऐसे अवसरों की खोज में रहें कि जहां भी प्रार्थना सभाएं हो रही हो वहां आप अवश्य जाएं। जो लोग परमेश्वर से सचमुच में बातचीत बनाए रखना चाहते हैं वे प्रार्थना सभाओं में उपस्थित होंगे, वफादारी से अपने कर्तव्यों को पूरा करेंगे और प्रार्थना सभाओं से अधिक आत्मिक लाभ प्राप्त करने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। स्वर्ग से प्रकाश की किरणें प्राप्त करने के किसी भी सुअवसर को वे अपने हाथों से नहीं जाने देंगे। आइए हम प्रार्थना के ये सौभाग्य, ये अवसर को इस्तेमाल करें, इसे नहीं जाने दें और प्रार्थना के जरिए परमेश्वर के नज़दीक आए, उससे वार्तालाप करें, उससे बातचीत करें। जो कुछ हमारे जीवन में हम महसूस करते हैं और चाहते हैं उसे परमेश्वर के सामने पेश करिए और विश्वास करिए कि वह हमें अपने बुद्धि के अनुसार हमें जो भला है वह जरूर देगा। वह करुणामय परमेश्वर है, वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और वह जो हमारे लिए सबसे उत्तम है वही हमारे लिए अपने प्रेम के अनुसार करता है। परमेश्वर आपके साथ हो, परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे दयालु महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं, हमें तू आशीषित कर। हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए कि हम प्रार्थना के द्वारा हम तुझसे मांग सकते हैं, हम तेरे पास आ सकते हैं पिता और तेरा आशीष पा सकते हैं। मेरे हरेक श्रोताओं के संग हो, उनके जीवन में तू आशीष दे, उनके जरूरतों को तू पूरा कर पिता। जो दुख बीमार तकलीफ में है उन्हें तू चंगा कर पिता, उनके दुखों को दूर कर और हमारे पापों को क्षमा कर, हमें तेरे राज के लिए तैयार कर।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindiarsamc@sudadventist.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।